अंत विराज से पवित्र जीवन एक चैप्टर है, उसके दो वचन आपके सामने पढ़े जा रहे हैं। इसको ध्यान से शुरू करें, फिर इस पर विचार होगा। इस संसार चक्र को सही समझते हुए, यानी जिसका आद है उसका अंत भी जरूरी है, जो सुख है वह दुख रूप हो जाएगा, जो बनी है सो बिगड़ जाएगी, जो अपना है सो बेगाना हो जाएगा। जहां पूर्ण आशा के यत्न में लगा हुआ है वहां अंत को निराश ही जाना है। जिस शरीर के अधिक सुखों का चिंतन रात दिन किया जाता है अंत में शरीर को छोड़ना पड़ता है। ऐसे संसार के अचरज खेल को समझते हुए नित ही सत्पद प्राप्ति का यत्न करना ही परम पवित्र साधन है। दूसरा वचन, छिन्न भंगुर इस जीवन यात्रा को अनुभव करके अधिक से अधिक कोशिश करके सब स्वरूप के सिमरण ध्यान में निःचलता धारण करनी चाहिए। यह ही अधिक विशेष यत्न जीवन उन्नति का है। प्रभु के सिमरण से तमाम असत नाम रूप की स्मृति का अभाव होता है। प्रभु के निज सुख को प्राप्त होने से तमाम दुख स्वरूप वासना का जाल अभाव हो जाता है। प्रभु के प्राण होने से देह की प्रायता जो परम अंधकार का स्वरूप है उसका नाश होता है, और बुद्धि बलवान होकर के अहम विकार जो मूल भ्रम का स्वरूप है उसका त्याग करती है, तब ही निर्मल शांति को अनुभव करती है जो अकथ और अलेख। इन दो वचनों में दो बातें बताई गई हैं। पहला वचन, इस संसार चक्र के वास्तविक स्वरूप का वर्णन कर रहा है। यह सारा संसार चक्र द्वंद्व रूप है। आपके जीवन की कोई भी स्थिति कभी भी किसी भी काल में एक जैसी नहीं रहती। उसमें वक्त के साथ परिवर्तन होता रहता है। इसी चक्र को यह वचन वर्णन कर रहा है। इसी चक्र का, इस संसार चक्र को सही समझते हुए, यानी जिसका आद है उसका अंत भी जरूरी है, जो सुख है वह दुख रूप हो जाएगा, जो बनी है सो बिगड़ जाएगी, जो अपना है सो बेगाना हो जाएगा। जहां पूर्ण आशा के यत्न में लगा हुआ है वहां अंत को निराश ही जाना है। जिस शरीर के अधिक सुखों का चिंतन रात दिन किया जाता है अंत में शरीर को छोड़ना पड़ता है। ऐसे संसार के अचरज खेल को समझते हुए नित ही सत्पद प्राप्ति का यत्न करना ही परम पवित्र साधन है। ये संसार चक्र का वास्तविक स्वरूप है। इसके बारे में जो इसी प्रकार विचार करता है वो एक अंतिम निर्णय पर पहुंच जाता है कि ये संसार दुख रूप। इसीलिए जो विचारवान है या कि ये जिसकी बुद्धि में विवेक आ चुका है उसका ये निर्णय फाइनल हो जाता है कि संसार दुख रूप है, अर्थात यहां पर निराशा के अलावा अन्य कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। ऐसे व्यक्तियों के लिए ही जो वाणी कह रही है, दुखी जीव की सुन पुकार, सतगुरु आए जगत बोलता। तो दुखी जीव कौन है? दुखी जीव केवल वो है जो अपनी बुद्धि से इस बात का निर्णय कर चुका है कि संसार में निराशा के अलावा अन्य कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। घोर निराशा, ये मत समझिए कि जिसका प्रिय कोई जिसकी मृत्यु हो गई उसका सारा जो जीवन है वो दुख में बदल गया। संसार में कितना भी बड़ा दुख आपको क्यों ना मिल जाए तब भी आपका जीवन दुख में बदलता नहीं है। उस समय आप दुखी हो जाते हैं, कुछ वर्षों तक दुखी रह सकते हैं, उसके बाद नया कोई ना कोई अपना रास्ता निकाल लेते हैं सुख प्राप्ति का, जीवन चलाने का। जीवन से आप फिर भी निराश नहीं होते। पति चला गया तो स्त्री के अंदर बेटे की आशा मती रहती है, बेटा बड़ा होगा, शादी होगी, फिर किसी प्रकार जीवन ठीक चल पड़ेगा। किसी की सर्विस छूट गई तो कहीं ना कहीं रोजगार की वो अपनी तलाश कर लेता है। किसी को रोग आ गया तब भी आशा कहीं लगा लेता है कि कभी ना कभी तो ठीक हो ही जाऊंगा। तो संसार में जो भी जीव दुखी होता है वो भविष्य में अच्छे दिन आएंगे इस बात की आशा के साथ वो जीता रहता है, वो संसार से निराश नहीं होता। निराश यदि कोई होता है संसार से वो केवल विचारवान होता है। तो ये जो वचन है ये उसी विचार को पेश करता है। तो दुखी जीव की सुन पुकार, सद्गुरु आए जगत उद्धार। तो जो जीव दुखी है अर्थात जो संसार से पूरी तरह से निराश हो चुका है उस जीव के अंदर ही गुरु बैठा हुआ है, तो वो उस जीव को पकड़ लेता है। वो जीव उस गुरु का संग करने लगता है, तभी गुरु जो है उसको इस जगत से उसका उद्धार कर देता है। तो जब तक जीव दुखी नहीं है, विचार करके देखो, यदि कोई जीव सुखी है और यदि उसका किसी गुरु पर विश्वास है भी या प्रभु को किसी भी रूप में वो मानता है तो क्या करेगा वो? उसकी दिल से एक ही प्रार्थना निकलेगी, सुखी जीव की बात हो रही है, उसकी दिल से एक ही प्रार्थना निकलेगी, प्रभु ये मेरा सुख बनाए रखना, कि ऐसा ना हो कि ये सुख के दिन मेरे कहीं दुख में ना बदल जाए। तो वो कभी भी ख्वाब में भी संसार से मुक्ति की बात नहीं कर सकता, प्रभु तो वो कर ही नहीं सकता। इसीलिए वो बाइबिल में आता ना कि सुई के छेद में से ऊंट का निकल जाना संभव है लेकिन अमीर व्यक्ति का ईश्वर के मार्ग पर चलना संभव नहीं। तो कारण क्या है? कारण यही है कि उसके अंदर सुख का निश्चय बैठा हुआ है, उसके अंदर दुख का निश्चय है ही नहीं कि जीवन दुख रूप है तो ईश्वर का वो क्या करेगा? ईश्वर उसके लिए किस काम का? यदि किसी काम का है तो एक ही काम का है कि उसके जीवन में जो सुख है वो जब देखता है कि सारे दुनिया में लोग दुखी हो रहे हैं, दूसरा दुख तो दिखाई पड़ता है, तो उसको देखकर डर लगता है, भय लगता है कि कहीं मेरे जीवन में दुख ना आ जाए, इसलिए वो प्रार्थना करता है प्रभु मेरा सुख बनाए। और यदि कोई दुखी जीव भी हो गया संसार में तब भी वो यही प्रार्थना करता है कि प्रभु किसी प्रकार ये दुख के दिन मेरे बीत जाए, कोई तो कृपा करो कि कम से कम मेरी मेरा जीवन चलता रहे। तो जो संसार से निराश नहीं है वो ईश्वर प्राप्ति की प्रार्थना क्यों करेगा? जरा सोचे देखो। इसीलिए जो संसारिक रूप से दुखी भी है ना वो मुक्ति के लिए प्रार्थना कर सकता है ईश्वर से, या जो संसार में सुखी है ना वो मुक्ति की प्रार्थना कर सकता है। मुक्ति की प्रार्थना केवल वही कर सकता है जिसका निर्णय ये हो चुका है, उसको फिर सुने कि इस संसार चक्र को सही समझते हुए, यानी जिसका आज है यानी जिसका प्रारंभ है उसका अंत भी जरूरी है, जो सुख है वह दुख रूप हो जाएगा, जो बनी है सो बिगड़ जाएगी, जो अपना है सो बेगाना हो जाएगा, जहां पूर्ण आशा के यत्न में लगा हुआ है वहां अंत को निराश ही जाना है। जिस शरीर के अधिक सुखों का चिंतन दिनरात किया जाता है अंत में शरीर को छोड़ना पड़ता है, ऐसे संसार के अथक छेल को समझते हुए नित ही सतपथ प्राप्ति का यत्न करना ही परम पवित्र साधन है। अब बताइए जो कुछ भी आपने समझ रखा संसार के बारे में ये वचन उस सबको खत्म कर रहा है, आपकी हर आशा को निराशा में बदल रहा है। तो जो सतगुरु है या यूं कहिए कि जिसकी बुद्धि पूर्ण विवेकवान है उसको ये दृश्य स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है और हम भ्रम में बने हुए हैं कि आज कोई चीज यदि नहीं समझ रही है या बिगड़ी हुई है तो कल तो जरूर दिन आएगा वो समझ जाए। इसलिए हम लोग आशा में जीते और सत्पुरुष जो है हमारे अंदर निराशा पैदा करते हैं। निराशा किस बात की? कि संसार का जैसा भी स्वरूप है उसको वैसा ही समझने की कोशिश करो। इसीलिए वो हमको अगली बात कहते हैं कि क्षण भंगुर इस जीवन यात्रा को अनुभव करके अधिक से अधिक कोशिश करके सब स्वरूप के सिमरण ध्यान में निःचलता धारण करनी चाहिए। यही अधिक विशेष यत्न जीवन उन्नति का है। प्रभु के सिमरण से तमाम असत नाम रूप की स्मृति का अभाव होता है। प्रभु के निज स्वरूप को निज सुख को प्राप्त होने से तमाम दुख रूप वासना का जाल अभाव हो जाता है। तो ये जो यात्रा है जीवन की ये क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर उसे कहते हैं जो पल में ठीक है पल में बिगड़ जाए। इसीलिए जीवन की ऐसी यात्रा को समझते हुए जीवन में जो परमानेंट चीज है जिसको ईश्वर कहते हैं उस ईश्वर को प्राप्त करने की उस ईश्वर को जानने की उस ईश्वर से संबंध स्थापित करने के लिए हमको कोशिश करनी चाहिए। उसका माध्यम क्या है? उसका माध्यम है नाम सिमरण या सत्सिमरण। तो वो सत्सिमरण सिमरण जब भी हम करते हैं ज्यादातर तो लोग करते ही नहीं, यदि कुछ करते भी हैं तो एक बाधा उनके जीवन में आती है, बार बार बाधा आती है कि चाहे वो आधा घंटा बैठे चाहे वो घंटा बैठे चाहे वो दो घंटे बैठे कि उनके अंदर संसार की याद बनी रहती है और अंत में एक कंप्लेंट होती है क्या करें बड़ी कोशिश करते हैं फिर भी वो संसार के जो चेतन है संसार का जो मोह है संसार का जो भय है चिंता है उसके कारण प्रभु की याद भूल जाती है। मंत्र जो जाप करते हैं वो भूल जाता है और संसार याद आता रहता है। उसका कारण यह है कि हमारी बुद्धि का निर्णय ठीक ठीक हुआ नहीं। हमारी बुद्धि का निर्णय हुआ ही नहीं है कि संसार दुख रूप है। जब संसार दुख रूप है तो फिर ये जीव संसार में क्या लेगा? इसीलिए वो संसार में काम तो करता है, ऐसा नहीं वो काम करना बंद करता है या संसार की बातों पर ध्यान नहीं देता, वो सब कुछ करता है लेकिन अंदर से उसको पता है कि संसार चक्र जो कुछ भी चल रहा है वो ईश्वर आज्ञा में चल रहा है। उसका जो शौक होता है ना उसके अंदर जो उमंग होती है वो गायब हो जाती है। संसार के अंदर जो उसकी उमंग जो शौक होते हैं वो उससे खत्म हो जाते हैं। केवल वो काम चलाने वाली बात संसार में करता है, अंदर से वृत्ति उसकी। देखिए आप जब भी कोई काम करते हैं आप अकेले नहीं होते, आपके घर वाले भी संग होते हैं, आपका पार्टनर भी संग होता है, संसार भी आपके संग होता है, एक दूसरे के संग रहकर आप काम करते हैं। इसीलिए आप केवल अपने लेवल पर निर्णय नहीं कर सकते कि मैंने क्या करना है, तो आप दूसरे पर क्योंकि निर्भर हैं इसलिए दूसरे पर निर्भर होने के कारण आपको विशेष प्रकार के कर्म में इन्वॉल्व होना पड़ता है। लेकिन जो शौक है आपका वो आपका अपना है, उसमें किसी का सहयोग नहीं। आपके मन की जो उमंग है वो आपकी अपनी है। तो वो जो है जिस जब व्यक्ति में ये होश आता है जैसा गुरु लिख रहा है जैसा गुरु कह रहा है उसके ऊपर वो जीव बार बार चिंतन करता है। क्यों चिंतन करता है? क्योंकि मेरी बुद्धि का निर्णय कुछ और कह रहा है और सतपुरुष की बुद्धि का निर्णय जो है वो कुछ और कह रहा है। तो इन दोनों में जो गैप है, इन दोनों में जो डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो वो अंतर जो है जैसे जैसे आप चिंतन करते हैं मनन करते हैं वो अंतर कम होने लगता है। एक दिन देखते हैं कि आपकी बुद्धि का भी वही निर्णय हो जाता है जो सतपुरुष की बुद्धि का निर्णय या शास्त्र का निर्णय। तो जब वो निर्णय मैच कर जाता है उस समय आप देखेंगे कि आपके अंदर भी संसार के प्रति निराशा आ जाती है, तभी आपके अंदर सही रूप में ईश्वर प्रणता आती है और सही रूप में आपको ईश्वर की याद आपसे बन पाती है। तो उस हालत में जब ये जीव सिमरन करता है तब जो अंदर अंतर्यामी गुरु है वो इस जीव के का जो संग है वो पकड़ लेता है। इसी को महाराज कहते हैं कि उस जीव के अंदर जो है वो नाद जागृत होता है या कुंडलनी उसके अंदर जागृत हो जाती है। तो ये घटनाक्रम कब घटता है? ये तभी घटता है जब जीव को बाहरी संसार से निराशा आ जाए या बाहरी संसार से वो निराश हो। निराश का मतलब वो निराशा नहीं जो जो लोगों के अंदर होती है जो डिप्रेशन में आते हैं। देखा होगा लोगों में कि संसार के प्रति जब निराश होते हैं ना उनके अंदर डिप्रेशन आ जाता है। लेकिन जो ईश्वर के प्रति जिसके अंदर प्रेम है और वो जो संसार के प्रति निराश है उसके अंदर डिप्रेशन कभी नहीं आता, क्योंकि वो जानता है कि संसार का स्वरूप ही है कि या हर चीज जो बनी है वो बिगड़ेगी। आज जो सुख के दिन है वो कल को दुख में बदलेंगे, कोई रोक नहीं सकता। आज जो जीवन है वो मृत्यु में परिवर्तन होगी। आज जो जवानी है वो बुढ़ापे में बदलेगी। आज जो स्वास्थ्य है वो कल को रोगी शरीर प्राप्त होगा। हर चीज यहां बननी और बिगड़नी। इसीलिए इस परिवर्तनशील संसार में, इस क्षण भंगुर संसार में मुझको दुख, मुझको सुख कैसे मिल सकता है, मुझको शांति कैसे मिल सकती है? तो इसीलिए ये जीव जब तक निराश नहीं होता तब तक ये जिज्ञासु नहीं बनता। जिज्ञासु उसको कहते हैं जिसको संसार में कोई आशा नहीं है। संसार में केवल वो प्रारब्धवश ईश्वर आज्ञा में कर्म करता है और लोगों को भी कर्म करता हुआ देखता है। कर्म का जो शौक है उसके अंदर से खत्म हो जाता है, शौक नहीं रह सकता उसके अंदर। कर्म को वो छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि जिस कर्म को करने के लिए शरीर पैदा हुआ वो सारे कर्म शरीर से होंगे, लेकिन अंदर से जो शौक है वो उसका खत्म हो जाता है। उसके अंदर आशा यदि कोई रहती है तो एक आशा रहती है कि मैं ठीक चल रहा हूं, ठीक सोच रहा हूं, एक ना एक दिन प्रभु से भेंट मेरी जरूर होगी। प्रभु मेरे अंदर अंदर जाने प्रभु मेरे ऊपर कृपा जरूर करेंगे। बस मात्र एक आशा उसके अंदर रहती है। तो वो व्यक्ति जब प्रेम करके ईश्वर की याद करता है तब चाहे वो महामन का जाप करे या अन्य कोई जाप करे उसके अंदर लगन पैदा होती है। जब भी सिमरन करने बैठता है उसका मन उसमें लगता है। फिर ये कंप्लेंट नहीं रहती कि क्या करें कि मन संसार में भाग रहा है, क्योंकि मोह ममता के कारण मन संसार में भाग रहा है। क्योंकि संसार को सत्य समझ रखा है, संसार को हमने सुख का साधन समझ रखा है, जबकि संसार केवल इसलिए बना है कि आप यहां पर अन्य जो दुखी लोग हैं उनकी सेवा करें और आपके शरीर की जो आवश्यकता है उसको पूरा कर लें। आपका संसार से वास्ता मात्र इतना है और ये करते हुए भी आपके जीवन में जो सुख और दुख आते हैं वो आप उनको ईश्वर आज्ञा में देते हैं। और वास्तविकता यह है कि मनुष्य का ये जन्म है वो इस वास्ते हुआ है कि ये सुख और दुख में सम रहना सीख सके। सुख प्राप्ति के लिए जन्म ही हुआ मनुष्य का, कि सुख और दुख तो आएंगे जीवन में आपके, वो प्राग के अनुसार आएंगे। काम आपके बनेंगे और बिगड़ेंगे प्राग के अनुसार, ऐसा होगा। तो मनुष्य ने उस तरह का जीवन व्यतीत करना है जिस तरह का जीवन व्यतीत करके सुख और दुख में उसके अंदर समता बनी रहती है। देखिए ये काम कब होता है? ये काम तभी हो सकता है जब इस शरीर के अंदर ऐसी वस्तु जिसमें मृत्यु नहीं है, जिसमें परिवर्तन नहीं है, जिसमें सुख और दुख नहीं है, जिसमें केवल आनंद है, केवल शांति है, जिसका नाम ईश्वर है, जब ये जीव उस ईश्वर से संबंध स्थापित करने के लिए जीता है। इसके जीने का उद्देश्य उस जीवन सत्ता से संबंध स्थापित करना है, न कि संसार के दुखी दुखों को दूर करके सुख प्राप्त करना है। यह उद्देश्य नहीं होता। तो इसीलिए वो संसारी चक्र में रहते हुए भी वो मर्यादा से जीता है और ईश्वर परायण होकर जीता है, ईश्वर आज्ञा में जीता है। कि कर्ता हता ईश्वर को समझता है, कर्ता हता अपने आप को नहीं मानता। और ममता की जगह था, ममता होता है मैं और मेरी। तो ये जो मैं और मेरी है, सबसे पहला क्या कि मैं शरीर हूं। मन के अंदर जो इच्छाएं होती हैं ये जीव उन इच्छाओं के चक्र में फंस जाता है। इसको यह पता नहीं है कि मन के अंदर जितनी भी इच्छाएं उठ रही हैं, ये सारी की सारी इच्छाएं तेरे जीवन में बाधक है। 100% जो भी तेरी इच्छा अच्छी और बुरी, जो भी इच्छा तेरे मन के अंदर, ये सारी इच्छाएं तेरे जीवन के लिए बाधक है। और इसलिए सबको कहते हैं कि मन जो है ये भूत और शैतान है। क्यों कहा कहते हैं वो, इसलिए कहते हैं कि मन वास्तव में ये बाहरी चीज है, इसका वास्तव में जीव से कोई संबंध नहीं है। जीव के अंदर जो इच्छा उठ रही है वो एक इच्छा है कि जिस प्रभु से ये जीव बिछड़ा है उस प्रभु से ये मिल जाए। तो उस इच्छा को क्या करता है ये संसारी इच्छाओं में बदल देता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि आप संसार की कोई भी इच्छा करिए, वो कभी भी इच्छा आपको संतोष नहीं दे सकती। या तो इच्छा जब करी है उसकी पूरी करने में लगे हुए हैं, वो आपको परेशान करती रहेगी। यदि पूरी हो गई तो तुरंत ही आपके अंदर नई इच्छा का जन्म हो जाएगा, या वही इच्छा अपना स्वरूप बदल देगी। किसी भी परिस्थिति में आप संतोष को प्राप्त नहीं हो सकते। जैसे कि जो सर्विस करते हैं वो तो किसी भी पोस्ट पर पहुंच जाए संतुष्ट नहीं होते, कहीं ना कहीं उनके आगे की दौड़ बनी रहती है। इसी प्रकार बिजनेसमैन का हाल है कि किसी भी स्थिति में संतोष नहीं मिलता, हमेशा आगे की दौड़ बनी रहती है। तो ये जो डिजायर है, ये जो इच्छा है, ये सिद्ध करती है कि मनुष्य सदैव जब तक मन के चक्र में रहता है ये असंतुष्ट रहता है। तो इसलिए ये इच्छा है कहां, जो वास्तव में जीव की इच्छा है प्रभु मिलन की इच्छा है। तो इसीलिए जब ये जीव प्रभु के मार्ग पर चलता है और जैसे जैसे उस मार्ग में इसको सफलता मिलती है, वैसे वैसे इसके अंदर असली संतोष की प्राप्ति होती है। इसको अंदर से लगता है कि मेरा जीवन सफल हो रहा है। तो वो जो प्रभु हैं वो आपके अंदर है, और जब जीव का प्रभु से मिलन वास्तव में होता है तब उसको पता लगता है जिन इंद्रियों से मैं संसार को देख रहा था, ये वास्तव में ये संसार इंद्रियों से अलग नहीं है, ये इंद्रियों के संग ही, अर्थात महाराज कहते हैं प्रेमी ये मन का संकल्प जो है वो संसार के रूप में प्रकट हो रहा है। जब ये संकल्प क्षीण होता है तब ये सारा संसार आपकी इंद्रियों के अंदर ही प्रवेश कर जाता है। अर्थात आंख जैसे इस समय देख रही है, तो जिसको उपनिषद में कहा गया चक्षुषा चक्षु, कि आंख जिस संसार को देख रही है, फिर ये जीव अपनी आंख को ही देखने लग जाता है, संसार इसकी आंख के अंदर सिमट कर इकट्ठा हो जाता है। फिर जिस मन को ये संसार में घुमा रहा है, फिर ये मन के जो संकल्प है, मन की जो डिजायर्स हैं, इसको अपने अंदर ही दिखाई पड़ने लगती है, जैसे कि मुझसे कोई अलग चीज। उसी प्रकार बुद्धि भी, उसी प्रकार प्राण भी, हर चीज इसकी अलग होती रहती है। ये जीव उस हालत में देखता है कि ना प्राण से मेरा कोई संबंध है, ना बुद्धि से मेरा कोई संबंध है, ना मन से मेरा कोई संबंध है, ना इंद्रियों से संबंध है, ना शरीर से, ना संसार से। तो उस हालत में जाके जीव ये दृष्टा बन जाता है इस हर चीज का। तो बताइए कि जो चीज मैं अपने आप को शरीर समझ रहा था, और कहा जीव जब सिमरन करते करते उसकी ये हालत हो जाती है कि वो हर चीज का दृष्टा बन जाता है, ये हर चीज अलग है और वो इससे अलग है, तब जाकर ये जीव प्रभु में जाके मिलता है। उसकी स्थिति का नाम है सम स्थिति, जिसको अंतिम पंक्ति में ये वाणी कह रही है कि प्रभु के प्राण होने से देह की प्राणता जो परम अंधकार स्वरूप है उसका नाश होता है। देह की प्राणता का पूरा पूरा नाश होता है। देह की प्राणता क्या है? शरीर की प्राणता, इंद्रियों की प्राणता, मन की प्राणता, बुद्धि की प्राणता, प्राण की प्राणता। जो श्वास आ रही है जा रही है ये मेरे जीवन का अंग है, लेकिन ध्यान करते करते एक अवस्था ऐसी आती है कि ये प्राण भी आपको अलग करके दिखाई पड़ता है कि प्राण अलग है और मैं अलग हूं। तभी सत्पुरुषों को जिस समय उनकी समाधि लगती है ये प्राण का रुक जाता है, प्राण का आवागमन ही बंद हो जाता है। जिस प्राण के बिना हम जी नहीं सकते, सत्पुरुष बिना प्राण के रहता है। तो प्राण भी उस ईश्वर के अंदर प्रवेश कर जाता है जहां से ये उदय हुआ है, जिसको महाराज कह रहे हैं कि नाभ कमल है अचरज थाना, जामे बसया श्री भगवाना, जहां से उपजे श्वास का थंबा, सुरती खेले खेल अचंबा। ये श्वास वहां से उदय होती है, उस कुंडली में से उदय होती है, जिसको महाप्राण करके कहा जाता है। तो ये जीव जब उस नाद का, उस कुंडली का अंदर अनुभव करता है और सारी सृष्टि, सारा शरीर, मन बुद्धि प्राण सब कुछ कुंडली रूप ही हो जाता है, उस समय जीव को पता चलता है कि ये वाणी क्या कह रही थी, तब जाके इसके अर्थ उसको समझ में आते हैं। ये वाणी किस चीज का बयान करे? तो कहते हैं कि प्रभु के प्राण होने से देह की प्राणता, जो परम अंधकार का स्वरूप है, उसका नाश होता है, और बुद्धि बलवान होकर के अहम विकार, जो मूल भ्रम का स्वरूप है, उसका त्याग करती है। तभी निर्मल शांति को अनुभव होती है, जो अकथ और अलेख है। वो शांति कहती है, उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, उसके बारे में कुछ लिखा भी नहीं जा सकता, वो अकथ और अलेख है, वो अगम शांति है। उसके बाद जब ये जीव उस समाधि से जागृत होता है, संसार के होश में आता है, उस समय पता लगता है इस सारी सृष्टि में उस ब्रह्म के अलावा, उस परमेश्वर के अलावा अन्य कुछ है ही नहीं। मेरे अपनी इच्छा के कारण, मेरे अपने मन के संकल्प के कारण ये सारा द्वैत रूप संसार नजर आ रहा था। जब मन का संकल्प खत्म हुआ तो सारी सृष्टि नाद रूप में बदल जाती है, उस ईश्वर रूप में बदल जाती है, उस ब्रह्म रूप में बदल जाती है, उस आनंद रूप में बदल जाती है। तो इसीलिए उस जीव को अंदर, चाहे उसकी आंख बंद है या उसकी आंख खुली है, केवल शांति के अलावा कुछ प्रतीत नहीं होता। वो है मोक्ष की हालत। फिर वहां जब मन का संकल्प ही नहीं है, मन के अंदर कोई डिजायर ही नहीं है, तो जन्म किसका, किस वास्ते वो जन्म देगा? शरीर की आवश्यकता मनुष्य को तभी होती है जब उसको इच्छा पूरी करनी हो। जब इच्छा ही नहीं बची तो शरीर का आप क्या करोगे? इसीलिए वो जीव चेतन सत्ता में खुद बदल जाता है, या यूं कहिए कि चेतन सत्ता का वास्तविक स्वरूप है, अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो लेकिन ये ईश्वर का मार्ग प्रारंभ कहां से होता है? प्रारंभ होता है दुख से। उठले गुनिया कर विचार, दुख का रूप सकल संसार। वाणी का स्पष्ट करिए, उठले गुनिया कर विचार, हे गुणी पुरुष तू जाग। किससे जाग? तू मोह में फंसा हुआ है, तू मोह करके संसार को सोच रहा है। दुख का रूप सकल संसार, ये निर्णय करिए, फाइनल निर्णय कि सारा संसार दुख रूप है। तो किस मोह जाल में फंसा हुआ है? इस दुख में तू अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। यदि जो व्यक्ति भी संसार में ज्यादा वक्त खर्च कर रहा है पैसा कमाने में, वो अपने जीवन की बर्बादी कर रहा है। क्योंकि गुरु तो निर्णय दे रहा है कि तू विचार कर, ये संसार दुख का रूप है, और तू इसमें सुख की तलाश कर रहा है। ये तो संसार सचमुच उधार देते हैं, जैसे प्याज है, एक एक छिकल छिलते रहो, उसमें छिकल के अलावा है ही कुछ नहीं। केले का तना है, उसका एक एक छिकल छिलते रहो, ठोस तो है ही नहीं, केवल छिकल ही छिकल। तो संसार में केवल जितना भी आप परतें खोलोगे, इसकी जितना डूबोगे, इसमें दुख के अलावा इसमें कुछ मिलेगा नहीं आप। तो होश में आ जाओ। इसलिए वो कहते हैं इसको छोड़ तो नहीं सकते आप, एकदम से अपने अंदर बदलाव भी नहीं ला सकते, लेकिन वो कहते हैं कि मर्यादा का पालन करो। मर्यादा में रहते हुए इस विचार को करते रहो, शास्त्र का स्वाध्याय करो, सत्संग का श्रवण करो, और प्रभु के प्रेम से याद करो कि अंतिम ठिकाना तेरा वही है। यदि जिंदगी में कभी चैन मिला तो प्रभु के दरवाजे पर दस्तक देने से ही मिलेगा। संसार में सिर्फ चैन नहीं मिल सकता, इसलिए वो चैन का रास्ता तो ओपन रखना, खुला रखना, उसके लिए कुछ वक्त निकाल। ऐसा नहीं सारा वक्त तो पैसा कमाने में, संसार के कामों में खर्च कर देता है, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। उसको तू कहता कर्तव्य है मेरे, तो तूने अपने मोह में आकर अपने कर्तव्य का क्षेत्र इतना बढ़ा लिया है कि जो वास्तविक कर्म करने आया था संसार में ईश्वर की भक्ति, वो रास्ता बंद ही हो गया था। तो इसीलिए उसका नियम बनाकर, उसका वक्त निर्धारित करके, उसमें कोई समझौता नहीं करना कि अंत में तेरा वही काम आएगा, बाकी सब निरर्थक जाएगा। इसीलिए संसार को दुख रूप समझना, जैसा कि वाणी वर्णन कर रही है और उस दुख करके फिर प्रभु की याद प्रेम से करना, तब जाके ये रास्ता तय होता है और प्रभु की कृपा हमको प्राप्त होती है। ओ धन सत्य।